माननीय प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह राव जी, महामहिम श्री डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी, आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी, आदरणीय दादी जानकी जी, भ्राता केवीके राजू जी, और आज की सभा में हमारे आमंत्रण पर हमारे आदरणीय अतिथि पधारे हुए भ्राता श्री बूटा सिंह जी, श्री हरदेव जोशी जी, श्री वेंकट स्वामी जी, श्री नवल किशोर जी, भ्राता प्रसाद जी तथा स्नेही बहनों और भाइयों, मैं भी दो शब्द तो अपने हार्दिक उद्गार के रूप में प्रकट करते हुए अवश्य कहूंगा कि आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह निमंत्रण स्वीकार किया और वो यहां इस तपोभूमि में पधारे, ईश्वरी कर्तव्य भूमि पर उन्होंने कदम रखे, इस योग के वाइब्रेशंस में, इस हाल में, ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से हार्मनी का जो विषय है, जो इस सम्मेलन का विषय है, कि हमारे समाज में सुसंवादिता कैसे हो, सहस्वरता कैसे हो, मिलजुल के हम कैसे चलें शांति से, सद्भावना से, इस विषय में उनकी विशेष रुचि है। उनका जीवन ही एक मिसाल है कि समाज में जितनी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको किस प्रकार से वो डायलॉग से, रिकंसिलिएशन से, एक ह्यूमिलिटी से निपटाने की कोशिश करते हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से भी जो हमने उनकी कार्यप्रणाली को देखा है, सबको साथ ले जाते हुए एक स्वर से वो कार्य करने की पद्धति उनकी है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं समझता हूं कि बहनों से उनका विशेष स्नेह है, अध्यात्म में उनकी एक रुचि है, वो एक बहुत हाई इंटेलेक्चुअल और एक स्कॉलर हैं, वो हमारे बीच में पधारे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। उसके उद्गार व्यक्त करते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हार्मनी का जो विषय है, आज के पृष्ठभूमिका में जो संसार के हालात हैं, चाहे वो बोस्निया के हों, चाहे सोमाली में हों, चाहे जो फार्मर रशियन रिपब्लिक्स थी उनमें हो, और अभी पूर्व दो महीनों में हमारे देश में जो कुछ हुआ, उन सबको लेकर मैं समझता हूं पहले एक समय था जब शीत युद्ध और आणविक अस्त्र शस्त्रों की दौड़ का एक विषय मुख्य माना जाता था, फिर उसके बाद पर्यावरण का, लेकिन उस रियो कॉन्फ्रेंस के बाद अभी लोग इस बात को समझने लगे हैं कि हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं समाज की, वो मानवीय पारस्परिक संबंधों में विषमता के कारण, वैर विरोध के कारण, वैमनस्य के कारण ही हैं। इसलिए अब सेंटर स्टेज पर यह विषय आ गया है कि हार्मनी कैसे हो हमारे देश में, हम मिलजुल कर कैसे चलें, वरना हम जो कार्य कर रहे हैं इतने वर्षों में हमने किया है, जो अचीव किया है साइंस से, आध्यात्म से या और साधनों से, उसका सबका मलिया मेट हो सकता है अगर हार्मनी न रहे। परंतु प्रश्न यह है कि हार्मनी के लिए क्या किया जाए। मैं समझता हूं कि हमें फोकस करने की जरूरत है, हमें अपना एक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में परमपिता परमात्मा से, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से जो हमें शिक्षा मिलती रही है, उसके आधार पर उसका सार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे ख्याल में 5 मुख्य नैतिक नियम हैं, मॉरल वैल्यूज हैं। आज मॉरल वैल्यूज की बात कही जाती है कि वैल्यूज का एक क्राइसिस है। वो जो 5 वैल्यूज हैं उनमें से सबसे प्रथम स्थान देता हूं प्रेम और सद्भावना को। और सद्भावना को इसलिए साथ ले रहा हूं कि अगर किसी से प्रेम आपका नहीं भी है, चलो कोई ऐसा आपसे व्यवहार करता भी है, तो कम से कम सद्भावना या गुडविल तो बनाए रखिए, ये मानवता है। इससे नीचे की स्टेज पर तो व्यक्ति को जाना ही नहीं चाहिए। कोई धर्म, कोई आस्था, कोई विज्ञान, कोई ज्ञान ये नहीं कहता। और उसके बाद दूसरा है जस्टिस, न्याय। और जस्टिस के साथ मैं शामिल करता हूं फेयर प्ले को। जस्टिस तो एक एंड रिजल्ट है, एक एंड प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो सारा प्रोसेस है वो फेयर प्ले है। अगर कहीं कंपटीशन भी है तो फेयर प्ले को, रूल्स ऑफ द गेम को तो ना छोड़िए। तो जो कार्य हम करते हैं, दूसरे के साथ न्याय कर रहे हैं या लूट खसूट मचा रहे हैं, ये हमारे सामने रहना चाहिए न्याय के साथ। इसलिए मैं औचित्य को शामिल कर रहा हूं। तीसरा है मनुष्य के प्रति तथा मानवीय अधिकारों के प्रति हमारा सम्मान, ह्यूमन राइट्स और द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल। और चौथा है सहनशीलता, फिर भी अगर कोई बात होती है तो सहन कीजिए, प्रेम से दूसरे को जीतिए, सद्भावना से जीतिए। एक व्यक्ति को तो सहन करना होगा, एक दफा सहन करने से बहुत सी आगे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। महसूस तो ऐसा होता है कि अभी कुछ कर डालना चाहिए, लेकिन सहन करना ही देखा गया है कि एक बहुत बड़ा सद्गुण है। और पांचवा है अहिंसा में दृढ़ आस्था और उसके प्रति प्रतिबद्धता, हमारी कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, कि अगर हमारे कोई डिफरेंसेस भी होंगे, हमारे कोई सेल्फ इंटरेस्ट भी होंगे, हमारे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे नॉन वायलेंस से। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ये बेसिक वैल्यूज हैं। और जो दूसरी बहुत सी वैल्यूज कही जाती हैं कि हमें स्पिरिट ऑफ रिकंसिलिएशन हो, को एग्जिस्टेंस हो, सेक्युलरिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, मैं समझता हूं उनके समय की सीमा है, इसलिए उनके विस्तार में ना जाते हुए सार में ये कहना चाहता हूं कि ये वो सब मूल्य इससे उपजते हैं। जब आप मानव राइट्स के प्रति और मानव के व्यक्तित्व के प्रति आप सम्मान करते हैं, तो नेचुरली आप उसके धर्म और उसकी आस्था के प्रति भी सम्मान करते हैं। सेक्युलरिज्म का तो ये प्राण है। और फिर अगर आप नॉन वायलेंस से कमिटेड हैं और साथ साथ रूल ऑफ द लॉ में आप बिलीव करते हैं, तो बाकी सब बातें को एग्जिस्टेंस, रिकंसिलिएशन वगैरह आ जाते हैं। और मैं समझता हूं कि ये हार्मनी के लिए अत्यावश्यक है। लेकिन अगर आप इसमें एक और जोड़ना चाहें, गुण तो जितने हों अच्छा है, तो मैं समझता हूं छठवां जो नैतिक मूल्य है वो इसमें ऐड कर दें, तो सिक्स पॉइंट्स ऑफ नेशनल हार्मनी, इंटरनेशनल हार्मनी एंड रिकंसिलिएशन का एक फार्मूला हमारे सामने आ जाता है, वो सिक्स्थ है, कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। जो कुछ आप करते हैं उससे पहले ये देख लीजिए कि इससे दूसरे के फीलिंग्स को इंजरी तो नहीं होगी, उसकी हानि तो नहीं होगी, दूसरे का भला भी सोचिए। सेल्फिशनेस आजकल संसार में सर्वव्यापक है और बहुत सारी समस्याएं हमारी इसीलिए पैदा होती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पारिवारिक और हमारे मानवीय संबंधों में एक तालमेल पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी भी कहा करते कि जो कार्य आप करते हो, जो नेशनल पॉलिसी फिक्स करते हो, उससे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को, लोएस्ट ऑफ द लो को लाभ होगा या नहीं, ये सामने रखो। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे अप्रैल 1955 में बांदंग में नॉन अलाइंड नेशंस ने ये एक समझौता किया था, पांचशील जिसे कहा गया था, इस प्रकार से अगर ये पांच या छह नियम ये अब हम अपना लेते हैं और हमारे देश की हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर धार्मिक संस्था, हर चिंतनशील व्यक्ति से पहली बात हम ये कहते हैं कि व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस, इसके विषय में आप क्या कहते हैं, जो भी मामला है वो हम देख लेंगे, बैठ के बात करेंगे, बट आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटेड टू नॉन वायलेंस, डू यू बिलीव इन ह्यूमन राइट्स, डू यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम विद लव, विद जस्टिस। अगर इस प्रकार से हमारे ये पांच शील हमारे नीति के निर्धारित करने वाले हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाएं, और खुशी की बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री स्वयं उस बांदंग कॉन्फ्रेंस में शामिल थे जिसमें ये पांच शील को अपनाया गया था, तो आज ये एक बहुत अच्छा मौका है, उनकी याद दिला रहा हूं, मैं ताजा कर रहा हूं। तो अगर ये हमारे सामने हो तो मैं समझता हूं, लेकिन ये सब तब आएगा जब हम ये समझें कि हम सब भाई भाई हैं, प्रेम का आध्यात्मक जब तक हमारा ओरिएंटेशन नहीं होगा, प्रेम किस आधार पर, प्रेम तो किसी संबंध में होता है, कि हम सब उस एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं, हम सब आत्मा हैं, हमने एक दूसरे के भलाई करनी है, एक दूसरे की समस्या को हल करना है, कोऑपरेट करना है, ये उसका आधार होगा। जब इस तरह से हम उसको अपनाएंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चय रूप से हम देश में एक नई हवा, नई फिजा, नया माहौल, एक नया वातावरण पैदा करने लगेंगे। समय लगता है हर एक चीज में, मैं ये नहीं कहता कि चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा, ये कोई जादू का खेल नहीं है, लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, अगर पहले पहले वही प्रतिबद्ध हो जाए इन प्रिंसिपल्स के विषय में, तो शुरू हो जाएगी, एक नींव पड़ जाएगी इसकी। और मुझे बहुत खुशी होगी हमारे प्रधानमंत्री जो स्वयं एक नमूना है, जिनकी लाइफ एक एग्जाम्पल है हार्मनी की, अगर वो इसकी बुनियाद डालेंगे, शुरू करेंगे, कार्य प्रणाली तो उनकी है ही, ये तो ये ईश्वरी विश्वविद्यालय तो उसमें सहयोगी है ही, इसमें मैं समझता हूं बहुत सी विशेषताएं हैं। लेकिन सात बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मुझे कहा गया है परिचय देने के लिए, लेकिन उसमें तो समय की जरूरत है। पहली बात तो आप ये देखते हैं कि यहां पर जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से जो ईश्वरी ज्ञान दिखाया, जो योग पद्धति सिखाई, जो नैतिक मूल्य सिखाए, उसकी शिक्षा बहने देती हैं। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन, जिसका नेटवर्क 60 कंट्री से भी ज्यादा में स्प्रेड ओवर है, जहां माताएं बहने ही ये शिक्षा देती हैं। और दूसरा, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डे टू डे जो इसका वर्किंग है, वो भी सारा बहनों के हाथ में। हम भाई लोगों को तो खुशी है कि हम उसमें शामिल हैं, पहली दफा विश्व के इतिहास में ये माताओं को एक रोल मिला है, तो एक गर्व की बात है। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी संस्था है जो इस कार्य को कर रही है। तीसरा, आप ये देखेंगे कि ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, इसकी शिक्षाएं सार्वभौम है, सर्वमान्य है, यूनिवर्सल है, इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ज्यूज, हर धर्म के लोग बिना किसी मेंटल बैरियर के, साइकोलॉजिकल बैरियर के इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं। इनके साथ कोई दूसरा एक किसी कल्ट का टैग नहीं है। और फिर ये यूएन का एक परामर्शक सदस्य है, कंसल्टेटिव मेंबर है, यूनिसेफ का भी और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भी। और साथ साथ आप देखेंगे कि इसका जो ईश्वरी ज्ञान और योग है, वो केवल आध्यात्मिक तो ही नहीं, बल्कि हर वर्ग, हर व्यवसाय, हर अनुशासन, हर डिसिप्लिन, हर प्रोफेशन के लोगों को उससे एक नई मार्गदिशा, एक नवीनता, एक नया ज्ञान, क्योंकि एक नया विश्व स्थापन करने के लिए नया ज्ञान चाहिए। हमारे यहां बहुत ज्ञान विज्ञान है, लेकिन विश्व हमारा किस तरफ चल रहा है? एक ऐसी नई विचारधारा चाहिए जिससे कि समाज को एक नया मोड़ मिले, वो यहां है। और इसके साथ साथ ये ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है, कमिटेड है नॉन वायलेंस में, पीस में, लव में, यूनिटी में, डिवाइन क्वालिटीज में, मेडिटेशन में, जो कि जरूरी है। सब तनावों से मुक्त मनुष्य हो जाता है जब मेडिटेशन करता है। तो इन सब के होते हुए प्रधानमंत्री जी उनसे परिचित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस ईश्वर विश्वविद्यालय की सेवाओं का, देश की सेवा में, ये ईश्वर विश्वविद्यालय देश की सेवा में समर्पित है। ये नॉन पॉलिटिकल है, अपोलिटिकल है, इसलिए सभी पॉलिटिकल वर्ग वालों का भी इनसे स्नेह है। तो इसका जिस प्रकार से भी, चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में, चाहे वो इसको एक इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस स्टडीज कह के, चाहे वो इसको एक यूनिवर्सिटी फॉर पीस कह के, एक राष्ट्रीय जो एक इंस्टीट्यूशन हो, पीस का कार्य उन्होंने देखा है किस प्रकार से लगभग पिछले 55 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। तो ये सेवाएं हम समर्पित करते हैं, वो जैसा ठीक समझेंगे इसका सदुपयोग करेंगे। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या ही अच्छा हो, हम होस्ट बनने के लिए तैयार हैं, अगर यहां पर एक ऐसा सम्मेलन किया जाए जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को, धार्मिक जो संस्थान हैं उनके नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, मीडिया वालों को, हर वर्ग के लोगों को, जिनका समाज में कुछ ओपिनियन है, से है, उनको अगर यहां आमंत्रित किया जाए और वो यहां पर हम उनका आतिथ्य करेंगे, हमें सेवा का मौका मिलेगा, उनकी मेडिटेशन भी होगी, योग भी होगा, देश में एक नई फिदा होगी, तो हम समझते हैं हम उसमें शामिल होंगे। अगर उस तरह का कोई एक कार्य किया जाए, उस पर वो और हमारे राज्यपाल महोदय विचार करेंगे, अगर ऐसा हो सके तो हम समझते हैं एक नई लहर चलेगी। और ये हमारा अव्यक्त वर्ष है जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा को अव्यक्त हुए, ये 25वां वर्ष चल रहा है, हमने इसको ईयर ऑफ हार्मनी के रूप से मनाना शुरू किया है। और अब मैं निवेदन करूंगा अपनी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारी आदरणीय दादी जानकी जी को कि वो जो 6-पॉइंट फार्मूला है, वो उसका फ्रेम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि पीछे थोड़ा अगर वो देखें तो शिव बाबा का चित्र है, उनका लाइट, उनका प्रकाश उनके ऊपर है, उनके राइट हैंड साइड पर प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र है, और बाईनी ओर जगदम्बा सरस्वती जी का, उनका आशीर्वाद भी उनको प्राप्त है। और चूंकि अभी उनसे बात हो रही थी, पंचशील की यादगारें आ रही थी, पंचशील का भी जो फ्रेम है वो मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं।
बल्कि उसके पार्टिकल्स, मैं गाड़ी में आता हूं, मेरे साथ में बैठा हुआ अगर स्मोक करता है, मैं स्मोक नहीं भी करता, It is possible that I may have cancer. It is because that man is releasing such particles in the air, which if they settle on my lips are going to my system. I can be a patient of cancer. तो ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति जो इस स्ट्रेस का शिकार बनता है उसको डिजीजेस होती हैं, बल्कि वो दूसरे संसार में सारे को रोगी बना रहा है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि शायद ही मुश्किल से ढूंढने से, रोशनी में चिराग लेकर भी अगर आप ढूंढें तो परफेक्टली हेल्दी आदमी आपको आज के संसार में शायद कोई मिले, जो सोशली भी, मॉरली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी पूर्ण रूप से हेल्दी हो। उसकी वजह यह है कि एक चेन रिएक्शन सा है, हम हेल्दी होने की कोशिश करते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स पैदा करता है। तो मेरा निवेदन यह है कि हम जो स्ट्रेस या टेंशन है उसके इस पहलू को भी ध्यान दें। किसी ने कहा है कि व्हेन यू मूव योर फिंगर यू मूव द स्टार्स, ये दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है और कोई भी एक्शन सबके सारे समाज को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति भी अगर टेंस है तो वो दूसरों को टेंशन की जो वेव्स वाइब्रेशंस वो देता है समाज में टेंशन पैदा करता है। तो इसलिए भी मैं समझता हूं कि राजयोग का होना जरूरी है, केवल इसलिए नहीं कि मेरे ही साइकोसोमेटिक डिजीजेस से मैं शांति या मुक्ति पाऊं, बल्कि एक स्वस्थ समाज पैदा करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल दरअसल क्या है कि बहुत से डिसिप्लिन्स की कोऑर्डिनेटेड कुछ डिस्कशंस नहीं हो पाती, वरना अगर उस तरह के इंटर डिसिप्लिनरी कुछ मीट्स हमारी हों, जैसे कि आज राजयोग और होलिस्टिक हेल्थ, मेडिकल साइंसेज और स्पिरिचुअल साइंसेज की एक कोऑर्डिनेटेड, एक इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इंटर डिसिप्लिनरी मीट हुई, इसी तरह से बहुत से और डिसिप्लिन्स हैं। आप जानते हैं कि मेडिकल साइंसेज में आज हिप्नोथेरेपी को भी स्थान दिया जाता है और बहुत से हिप्नोटिस्ट ने जो हिप्नोटिक रिग्रेशन किए हैं उसके आधार पर अब मेडिकल प्रोफेशन वालों को भी ये मानना ही पड़ेगा, इससे वो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हिप्नोटिक रिग्रेशन से ये पाया गया कि बहुत से लोग अपने पूर्व जन्मों के हालात बताते हैं, और एक नहीं कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वो रिकॉर्ड किए गए। मेडिकल प्रोफेशन के बहुत से लोगों ने री इंकारनेशन के केस हिस्ट्रीज को इकट्ठा किया, वो भी हमारे सामने है। उन सबको लेकर अगर हम देखते हैं, बल्कि हिप्नोटिकली रिग्रेस करके वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति ने कौन सी बातों को रिप्रेस किया जिसकी वजह से इसको डिजीज है, वो अपने एक डिसिप्लिन से उन रोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ खिंचवाना चाहता हूं कि अभी जो डिजीजेस हमारी गलतियों से पैदा होते हैं या और फैक्टर से, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि हमारी प्रीवियस बर्थ भी हुई है, इंसान की री इंकारनेशंस भी होती हैं, और उनकी वजह से उसके जो कुछ हैबिट्स हैं, जो कुछ पूर्वजनित संस्कार हैं, उसकी कुछ प्रीवियस प्रोक्लिविटीज हैं, कुछ टेंडेंसीज हैं, कुछ इंक्लिनेशंस हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो वो शुरू से ही अपने साथ लेकर आता है, उनके कारण से भी बहुत से रोग उसको बचपन से पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बहुत से रोगों के कारण हमें दिखाई नहीं देते, हम उसको एक जेनेटिक इनहेरिटेंस नाम से कई दफा समझ लेते हैं या हेरिडिटरी डिजीजेस मान लेते हैं, लेकिन बहुत सी डिजीजेज ऐसी भी हैं जो मनुष्य के शुरू से हैबिट्स की वजह से उसमें पैदा होती है। उनको आप ड्रग से कहां तक ठीक करेंगे जब तक मनुष्य के संस्कारों को ठीक न करें। और मुझसे आने वाले वक्ता, पूर्व वक्ता जैसे पर्सनैलिटी ए के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कंपिटिटिव है, अग्रेसिव है, लाइफ में पुश करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू राइड रफशॉड ओवर अदर्स एंड जस्ट वॉन्ट्स टू पुश अहेड विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स, विदाउट हैविंग एनी कंसिडरेशन एंड रिगार्ड फॉर अदर्स। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू क्योर सच काइंड ऑफ पर्सन अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम काइंड ऑफ ए पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज पीपल। हाउ कैन यू क्योर देम बाई जस्ट गिविंग सम काइंड ऑफ मेडिसिन, पिल्स और ड्रग्स और वट एवर। इट इज हियर ऑल्सो दैट राजयोगा कम्स इन टू क्योर दी पर्सन ऑफ देयर पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स। अनलेस एंड अंटिल यू क्योर दीज पीपल ऑफ देयर पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स, देयर इलनेस कैन नॉट बी परमानेंटली रिमूव्ड। उनके रोग को आप हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए जरूरत इस बात की है कि राजयोग को आप साथ साथ लें। सिर्फ स्ट्रेस की बात की नहीं है, बल्कि वैसे ही जो हैबिट्स की मनुष्य की बात है, अगर साथ साथ उसको आप राजयोग प्रैक्टिस ना कराएं तो वो व्यक्ति एक डिजीज से फारिग होगा, दूसरी हो जाएगी, दूसरी से फारिग होगा, तीसरी हो जाएगी। फिर एक बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो जीवन हम जी रहे हैं, मैंने वो जीवन भी जिया, और जब मैं राजयोग में आया वो जीवन भी मैं जी रहा हूं, और मैं देखता हूं कि रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर, लिटरली मैं कह रहा हूं आपको, रात दिन का अंतर है। जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति और एक जागता हुआ व्यक्ति, उसकी जो सारी कॉन्शियसनेस की स्टेज है, उसकी सारी जो स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ लिविंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्वप्न अवस्था ड्रीम स्टेट अलग स्टेट है। जिन लोगों ने स्लीप को स्टडी किया है वो जानते हैं कि ड्रीम स्टेज क्या है, रैपिड आई मूवमेंट जिसमें होती है वो ड्रीम स्टेट क्या है, और जिसमें मनुष्य की आई बाल स्टिल्स होती है वो ड्रीम स्टेट क्या है, डीप स्लीप की स्टेज क्या है, जिस वक्त मनुष्य अवेकन अवस्था में होता है उस वक्त उसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की क्या हालत होती है, उसके मेडुला और ओब्लांगेटा की क्या कंडीशन होती है, उसके ब्रेन सेल्स की क्या कंडीशन होती है, उसके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। जैसे बहुत से ब्रेन साइंटिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारी ऐसी फैकल्टीज हैं जिनको हमने अवेकन ही नहीं किया, आधी फैकल्टीज को भी हम यूज नहीं कर रहे, हमारे माइंड में ही इतनी एबिलिटीज हैं जिनका हमें पता ही नहीं, बाय डिस यूज वो एट्रॉफी हो गई है या अभी तक वो अवेकन हुई ही नहीं, हमने प्रयोग ही नहीं किया। किसी किसी केस में हम देखते हैं और हम उनको जीनियस कह देते हैं, लेकिन वास्तव में हर एक व्यक्ति में वो होनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट हमने किया ही नहीं। किसी के राइट ब्रेन का हुआ है तो लेफ्ट ब्रेन का नहीं हुआ, किसी के लेफ्ट ब्रेन का हुआ है तो राइट ब्रेन का नहीं हुआ, किसी का इमोशनल हुआ है तो इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ, किसी का एनालिटिकल नहीं हुआ तो फैकल्टी का नहीं हुआ तो दूसरी फैकल्टी का हुआ है। तो ये जो हमारी स्टेट ऑफ लिविंग है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल, और मैं कहूंगा कि हम अपने जीवन का 1/10 पार्ट भी नहीं जी रहे। जीवन में लुत्फ क्या है, जीवन में आनंद क्या है, जीवन में खुशी क्या है, जीवन में मस्ती क्या है, जिसमें आपको लगे कि लाइफ एक बड़ा वैल्यूएबल रिवार्ड है, लाइफ इज वर्थ लिविंग, आप जीना चाहें क्योंकि उस जीवन में आनंद है, उस जीवन में एक मस्ती है, उस जीवन में एक खुमारी है, उस जीवन में एक खुशी है, और दुनिया के सब खजाने उस खुशी के सामने हेज हैं। वो कितने मनुष्य हैं इस जीवन दुनिया में, मैं समझता हूं गिनती के भाई बहन होंगे जो उस जीवन को जी रहे होंगे। तो किसी ने कहा है कि ये जो आनंदमय अवस्था है, ये जो तुरिया अवस्था है, ये जो खुमारी वाली अवस्था है जिसको स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन हम कहें, वो स्टेज जीने के लिए डॉक्टर्स के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, नॉन पेशेंट्स के लिए भी, सभी के लिए ये जरूरी है। राजयोग की इसलिए भी आवश्यकता है, हम केवल उसके मेडिकल बेनिफिट्स को देख रहे हैं। दूसरा मेरा ये निवेदन था कि आपके सामने जो राजयोग की गाइडेड मेडिटेशन दी जाती है, आप इतना ही ना समझ लें कि राजयोग शायद इतना ही है। राजयोग एक इन इटसेल्फ एक पूरी एजुकेशन है। इसमें मैं समझता हूं कि सारे डिसिप्लिन का एसेंस
राष्ट्रपति महोदय के साथ आपके परिवार के अन्य सदस्य और आपके साथ आए हुए सभी ऑफिसर्स का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र जी, जो हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के सीनियर मोस्ट भाई हैं, जिन्होंने 30 साल से अपना जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित किया हुआ है, लगभग 200 बुक्स तथा ब्रोशर्स आपने लिखे हैं, 2-3 बार विदेशों में विश्व सेवा के लिए आप चक्कर लगाकर आए हैं, और भारत में भी आपने कोने कोने में जाकर ये ईश्वरी संदेश पहुंचाया है। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहने अपने दिल में कौन सा गीत गा रहे हैं, उनके दिल में क्या इस समय उमंग है, वो आप अपने स्वागत प्रवचन के द्वारा प्रस्तुत करेंगे और अभिनंदन पत्र पेश करेंगे। भ्राता जगदीश चंद्र।
ओम शांति। जैसे कि अभी मंच से कहा गया, आप सभी जो उपस्थित बहन भाई हैं, केवल वे ही नहीं बल्कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के विश्व भर में जो प्रभु स्नेही योग अभ्यासी पवित्र जीवी बहन भाई हैं, आज उनका सब कितना मन प्रफुल्लित होगा कि हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधारे हैं। तो मैं उन सबका एक प्रतिनिधित्व करते हुए उन सब की ओर से आपके सामने अभिनंदन पत्र पढ़ता हूं। परमपिता परमात्मा के असीम स्नेही एवं स्वतंत्र विशाल भारत की जन आकांक्षाओं के एकमात्र स्रोत विश्व बंधु ज्ञानी जय सिंह जी, आबू पर्वत की विराट भुजाओं में बसी इस तपोभूमि का जनमन
आपका हृदय से स्वागत करता है। हे भारत के गौरव विशाल कर्मवीर, विशाल हृदय कर्मवीर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आज आपके अपने हृदय से, आपकी तशरीफावरी से गौरवान्वित हुआ है। स्नेह संपन्न नैसर्गिक सूत्र में बंधे हमारे अनेकानेक राजयोग निष्ठ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अपने देश विदेश के 1500 सेवा केंद्रों की ओर से आपका प्रेम पूर्ण अभिनंदन करते हुए आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। भारत के उत्थान और उत्कर्ष की कहानी अपनी विशिष्ट रीति नीति से नित्य ही पल्लवित करने वाले भारत रत्न, आपको दृढ़ संकल्प शक्ति, निर्भीकता, दूरदर्शिता व परिपक्वता ने देश की हित कामना एवं राष्ट्रीय एकता की जो ज्वलंत स्वरूप साकार किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। आप जैसे महामहिम राष्ट्रपति को पाकर निस्संदेह भारत का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज की इस पावन वेला में हमारे रोम रोम से ये एक ही अभिलाषा प्रस्फुटित हो रही है कि आप किसी प्रकार देश विदेश के कल्याण हेतु राज्य सत्ता के साथ साथ ईश्वरीय सत्ताधारी बन, सहज राजयोग द्वारा दिव्य शक्तियों के अधिकारी बन चिरकाल तक मानव सेना मानव सेवा में अग्रसर होते रहे। सफलता सदा आपके कदम चूमती रहे, इसी अंतर्भावना के साथ हम हैं आपके स्नेही ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार आपके शुभाकांक्षी। इसके साथ साथ हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से दिल्ली में भेंट हुई थी कुछ समय पहले, जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के विदेशों में सेवा केंद्र हैं उनकी निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी जानकी जी की, उनका भी एक टेलीस मैसेज आपके प्रति आया है, वो मैं पढ़ता हूँ। वेलकम टू द होलीएस्ट एंड हाईएस्ट पिलग्रिमेज प्लेस, द लैंड ऑफ द हनी फॉरेस्ट मधुबन, द लैंड ऑफ गॉड्स लव एंड लाइट। वी नो दैट ऑल ब्लेसिंग्स एंड मल्टी मिलियन फोल्ड फॉर्चून फ्रॉम गॉड अवेट्स यू। ऑल द गुड विशेज ऑफ योर एंटायर स्पिरिचुअल फैमिली आर विद यू। बी के जानकी। आपके साथ साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का, श्रीमती मेरा जी का और डॉक्टर मनजीत कौर जी का, साथ साथ अपने मिनिस्टर बकौलिया जी का और उनके साथ जो परिवार के सदस्य या दूसरे बहन भाई पधारे हैं उन सब का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ कुछ दो शेर आपकी अकीदत में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जोस्त जूरू को रहती है जिसका वसल पाने की, जोस्त जूरू को रहती है जिसका वसल पाने की, वसल का मतलब होता है परमात्मा से मिलना। हाँ जोस्त जूरू को रहती है जिससे मिलन मनाने की, मिली सब बरकतें हो तो भी चश्मा ढूंढती है जिसको पाने की। मनुष्य को जीवन के जैसा सामान मुयसर हो जाएं, परंतु फिर भी एक इच्छा जीवन में जो परम इच्छा है वो ये रहती है कि किसी तरह से परमात्मा से वसल हो जाए। पाक परवरदिगार आलम का है जो आप उसके घर आए, पाक परवरदिगार आलम का घर है जो आप उसके घर आए, मन में सरूर है कि मुदब्बर घर आए मोतबिर आए, दिल करता है दुआएं के सब रूहानी राज खुल जाए। अभी भी जब हम रस्ते में आ रहे थे तो कुछ ज्ञान की चर्चा चल रही थी, आपके कुछ प्रश्न थे तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमें खिदमत का मौका बहुत कम मिला है, रूहानी सेवा हम पूरी नहीं कर पाए। मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी साहब से भी कहा था और प्रेसिडेंट साहब से खास निवेदन किया था कि अगर आज थोड़ा सा समय मिलेगा तो जो यूथ की प्रदर्शनी है वो आपको दिखाएंगे जहां आप ठहरे हुए। इसी उस ख्याल से अर्ज किया है, दिल करता है दुआएं के सब रूहानी राज खुल जाए, वक्त आप दे के हम रूहानी सेवा कर पाए। एक बार फिर स्वागत करता हूं।
स्पेशल अतिथि महोदय और माननीय डॉक्टर जय बहन और भाई, मुझे कहा गया है कि मैं कुछ आज आत्मचर्चा आज इस सभा में करूं और थोड़ी देर पहले मुझे निर्देश मिला था कि मैं शहर राजो के विषय में जो कि तीसरे विश्वविद्यालय का मुख्य विषय है उस पर कुछ अपने अनुभव की इस भूमिका में थोड़े किसानों में बात आपके सामने रखना। बात दरअसल यह है कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले जब मैं एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में प्रधान अध्यापक के पद पर था, जिसम के पद पर मुझे उस समय की याद आ रही है जब राजयोग का प्रश्न मेरे सामने आया है। मुझे योग में विशेष रुचि थी, बचपन से कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभव पूरा करते थे, हो सकता है कि पूर्वजों की भर्ती या साधना का कुछ फल रहा हो, परंतु कई बार ऐसे बैठे बैठे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किसी पात्र के पीछे से कोई इतनी शक्ति कोई इतनी आवाज मुझे बुला रही है, लेकिन इस आत्मा को कोई रास्ता नहीं मिलता और वो इतनी शक्ति वो परमपिता परमात्मा जिसे सब ज्योति स्वरूप कहते हैं वो मेरे विपरीत शक्तियों के सामने आता नहीं है। मन में एक उत्कट इच्छा बनी रहती कि इसी जीवन में मैं और किसी का शौक अपने सामने ना लेकर संसारिक वैभवों पदार्थों मान और पद की बातों में रखकर अपने जीवन में एक ही एक चेष्टा करूंगा कि मैं परमपिता परमात्मा का अनुभव अपने जीवन में पाऊंगा। उसी लक्ष्य को लेकर मनोबल से मैं चलता रहा, उससे लेकर मैंने राजनीतिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया और साथ साथ योग के जो मूलभूत संकट में ग्रंथ है जैसे आगो प्रदीपिका है या ज्ञान संहिता है या शिव संहिता है या अन्य कुछ शास्त्र है पंडित जी का योग दर्शन है, इन सब का अध्ययन किया और उस पर बहुत सी टीकाएं भाष्य इत्यादि का भी अध्ययन किया, परंतु वो इच्छा भी पूरी नहीं हुई। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि योग को एक प्रैक्टिकल विषय है, एक करने की और अनुभव करने की एक बात है और जो अनुभवी हो जिसने उस चीज को पाया वही उसका अनुभव करा सकता है, क्योंकि किसी प्रैक्टिकल का एक आधार जरूर हुआ करती है लेकिन प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल अपना आम अपना महत्व रखता है। मैं अनुभव की सीताराम के संस्थाओं में जाकर उससे मुझे कोई शारीरिक लाभ जरूर हुआ और उसको केवल झुकाव भी हुआ, परंतु जो चीज मुझे चाहिए थी जिसकी जस्तजू थी जिस रात में मैं था वो मैं ना पा सका और उसी बात को लेकर मेरा मन कुछ भरा भरा रहता था। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से खो जाता है और उसको ये रहता है कि किस प्रकार से वो माता पिता मुझे मिले, तो मुझे जो योग की इच्छा थी बहुत से लोग एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए योग का अभ्यास करते हैं, कुछ लोग योग की कुछ स्थितियां हनुमान अभिमान इत्यादि जो योग दर्शन में बताई गई है उनकी लाभा को लेकर योग का अभ्यास करते हैं। कईयों ने जीवन में मुक्ति या भोग की प्राप्ति की इच्छा उसके कारण से भी योग का अभ्यास करते हैं, परंतु मुझे योग का जो अभ्यास करे उस समय जब मैं बात कर रहा हूँ जो शौक था जो लगन थी जो एक उत्तर इच्छा थी वो इसलिए विशेष रूप से कि मैं जो विज्ञान का अध्ययन करता या जो प्रदर्शनों का अध्ययन करता उससे मैं ये इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये संसार परिणामी है परिवर्तनशील है, यहाँ की सब चीज क्षणभंगुर है और फिर है कुछ भी संसार में शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज यहाँ रहने वाली नहीं है, न ये शरीर रहने वाला है न ये राज रहने वाला है, इस पृथ्वी में बड़े बड़े राजाओं को अपने में समा लिया जो चक्रवर्ती राजा चढ़ाते थे वो भी एक दिन नए है, तो कैसा एक ऐसा योग हो कि उस परमात्मा की याद में अंजन और ऐसा आनंद अनुभव हो ऐसी शाश्वत शांति अनुभव हो जीवन में वो एक अनासी कराम से मिल जाए, उस बात को लेकर मैं योग सीखना चाहता था कि जो आनंद की अवस्था जो एक ऐसा लजत ऐसा रस ऐसा अनुभव जिससे उत्तर जैसे अच्छा और कोई उत्कृष्ट अनुभव नहीं है ऐसा अनुभव मेरे जीवन में हो। मैं कई बार जो चित्र में शंकर जी को देखा करता लोग मुझे कहते कि ये योग साध रहे हैं, तो कैसा जो योग है जिसमें रंग जाने से जीवन में सदा के लिए आनंद आ जाता है और सब विकार मिट जाते हैं, मन का जो मन अवयव विक्षेप है वो नष्ट हो जाता है और मन एक रात अवस्था को प्राप्त करके स्थिर हो जाता है, जिसको सिद्ध प्रकट कहा है, उसके लक्षण जीवन प्रकट हो जाते हैं। और गीता में जिस दैवी संपदा का वर्णन किया है वो दिन मन स्वतः ही आते चले जाते हैं। उसके साथ साथ ऐसे लोग की मुझे दिलाह थी, उसको लेकर मैंने गीता भी पढ़ी और भी संसार के अन्य धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनका अवलोकन भी मैंने किया। लेकिन जबकि मैं बात आपसे कह रहा हूँ, उन समय ब्रह्मा कुमारी ध्यानों का देवी आगमन हुआ, तब इस जीवनी विश्वविद्यालय की सेवाओं का भी प्रारंभ हुआ था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में देवी ने ध्यानों को आमंत्रण मिला था मेडिटेशन के विषय पर कुछ बोलने। और मन को नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं, माइंड कंट्रोल की क्या विधि है, इस पर भी कुछ कह रहे हैं। मैं मनोविज्ञान का भी एक विद्यार्थी था, मन क्या है ये मेरे मन में बहुत बड़ी उत्सुकता बनी रहती थी कि मन ही से तो सारा खेल है, मन ही से ये सब रचना हंसी हुई है और मन को कुछ नहीं आता। कहीं मन को दबाने की बात हो रही है, कहीं मन को मारने की बात हो रही है, कहीं चित्र की मृत्यु के विरोध की बात कही जा रही है, लेकिन ये मन क्या है, ये चित्र क्या है, इसको मैं ठीक चीज से जानना चाहता था, अपने भीतर में जाकर झांकना चाहता था कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कौन हूँ और मेरा आत्मसम क्या है, मैं इस बात के प्रश्न का भी समाधान चाहता और मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न की इच्छा मेरी नहीं थी, केवल मेरी नहीं थी, बल्कि आप जैसे आप जो यहाँ बहने और भाई उपस्थित हैं वो इसी इच्छा को लेकर ही हुआ है। ये जितने लोगों के संपर्क में आता हूँ मैं तो देखता हूँ किसी में स्पष्ट रूप से ये विचार जागृत होते हैं, किसी में थोड़े सुषुप्त होते हैं, एक डिग्री का अंतर केवल होता है, लेकिन हर एक के मन में ये इच्छा होती जरूर है। कौन व्यक्ति है संसार में जो ये नहीं चाहता होगा कि उसे स्थायी शांति प्राप्त हो, उसके जीवन में वो परमात्मा को अनुभव करने वाला जो आनंद है वो प्राप्त हो। मेरे ख्याल में ये निरपवाद बात है, हर एक व्यक्ति इस चीज का फायदेमंद है, इस चीज को चाहता है। तो मैं इसके बाद कह रहा था कि ध्यानों का जो प्रवर्तन महाथियोसॉफिकल सोसाइटी में हुआ उसको सुनते सुनते पहली बार, उससे पहले मैं प्रवर्तन सुना करता था, बड़े धुआं बात करते हैं, बड़े लच्छेदार भाषण, बहुत ही अच्छे रमणीक सुंदर एक बहुत शब्दों की झंडा में कई प्रवर्तन सुनने का मुझे मौका मिला, उससे लाभ भी हुआ करता था। लेकिन उन्हें पहली बार का मौका मेरे जीवन में ऐसा आया था जब उस प्रवचन को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि मैं देर से ज्यादा हो गया, जिस चीज की मैं पुरुषार्थ किया करता, गीता में पढ़ा करता कि देह अलग है तो ये वस्त्र के समान है और आत्मा सब ये शरीर को पुराने वस्त्रों की तरह से छोड़कर चली जाती है, लेकिन वस्त्र से न्यारी आत्मा कहते हैं, उस बात को अनंत रूप की दिल्ली से उस रास्ते को मैंने नहीं आना। परमात्मा प्रकाश रूप है, वो शांत रूप है, प्रेम रूप है, ये शास्त्रीय रूप से वर्णन मैंने परमात्मा का पढ़ा और सुना था, लेकिन वो अनुभव, वो शांति कैसे होती है, वो प्रेम उसका कैसा है उस माता पिता का जो संसार की मनुष्यात्मा से विलक्षण प्रेम है, जो एक चुंबक की तरह से मनुष्य को खेल देता है और जिसका सहारा ढूंढने की हर एक आत्मा चेष्टा करती है, ये मेरे मन में प्रश्न बना पड़ता। और मैं जैसे कि आपसे निवेदन कर रहा था, वो पहला एक ऐसा मौका था जब इस प्रवचन को सुनते सुनते मैं उस स्थिति घटित हो गया और मैंने अपने रूप से कोई पूछा नहीं किया, सिर्फ ये कि मेरे पृष्ठ भूमिका बनी हुई थी और उसको रद्द से होकर मैं सुन रहा था। उस सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि वो तो मेरा सुख है, आपके सुख जिसे अति सुख श्रीमद भागवत में कहा गया है और अन्य अन्य ग्रंथों में अन्य अन्य नाम से पुकारा गया है, वो मुझे उसका कोई गलत उसका कोई अनुभव महसूस हुआ और मैं ऐसा अपने आप को महसूस करने लगा उस भरी में सभा में बैठने के बावजूद भी मेरे आसपास कह कर थी, लेकिन मैं ऐसा महसूस करने लगा कि मैं इस प्रकार के समुद्र में हूँ और बैठे हुए लोग भी मुझे धुंधले धुंधले जैसे मुझे दिखाई देते एक प्रकाश में थे, लेकिन मैं अपनी वो स्थिति उस समय पाता मुझे ऐसा लगा कि मुझे योग की शिक्षा मिल सकती है तो यहाँ मिल सकती है। तो बहनों से जब संपर्क किया मुझे कहा गया कि एक सप्ताह अगर उसका कोर्स किया जाए तो उस चीज को सीखा जा सकता है। वो दिन मैं समझता हूँ मेरे जीवन के स्वर्ण दिन थे, मेरे सौभाग्य के उत्कर्ष के दिन थे, उस परमात्मा की कृपा में निर्भर थी और वो दिन मुझे जो संकल्प है उसने आकर्षित करके लिया है और आज मैं अपने को एक धन्यवाद मानता हूँ, उस परमात्मा की कृपा मानता हूँ कि मैं उस चीज को पा सका जिसकी मुझे इच्छा थी और ये केवल उसी कृपा का प्रसाद है। और धन्यवाद भाइयों, मैं अपने विदेशों में जा रहा हूँ, जैसे कि पहलू ने अभी कहा आपके सामने, वो इसी तरह से कि वो जो मेरा अनुभव है, वो जो परमात्मा की देन है, वो जो उसने उस पर कृपा की। बहुत से ऐसे भाई बहन मेरी तरह से भी संसार में, भारतवर्ष में ही केवल नहीं बल्कि देश विदेश में ऐसे आत्मा है जो उस पिता को, उस परमात्मा को, उस मातृता के स्नेह को प्राप्त करना चाहती है। तो उस एक्सपीरियंस को मैं दूसरों में शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने जो पहले योग के विषय में चर्चा सुनी, पढ़ी और उसका जानना शिक्षण प्राप्त किया, मैंने ये देखा कि तीसवें विश्वविद्यालय में जो योग की शिक्षा है वो अति सरल है, अति सहज है, और उसको यदि कोई ठीक रीति से नियम पूर्वक विधि पूर्वक उसका अभ्यास करे तो न केवल वो सुगम है बल्कि थोड़े ही समय में वो उस फल को प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे इच्छा है। तो क्यों ना जब ऐसी भगवान मिलता है परमात्मा से तो सब आत्माओं को जो उसके लिए इंतजार में है उनको भी उसका वरदान दिया जाए। अब आप इससे कुछ सोचते होंगे कि मैंने योग के विषय में तो काफी कुछ कहा, लेकिन वो योग क्या है जो मैंने यहाँ सीखा। मैं उनके समय कम है, मेरे पास प्रोग्राम काफी बड़ा है, इसलिए मैं आपका आगे समय नहीं दूंगा। बात को तो किसी और विषय आधार बात को लेकर किया गया है, परंतु योग का विषय ऐसा है जिसके बोलने में मन करता है और मैं समझता हूँ कि आपका भी सुनने का मन करता हूँ, इसलिए मैं केवल दो तीन मिनट में आपसे इतना निवेदन पूरा करना चाहूंगा कि जिस योग को हम विभिन्न नाम से गीता में पढ़ते हैं कि ज्ञान योग है, कर्म योग है, संन्यास योग है, या भक्ति योग है, बुद्धि योग है, इत्यादि अनेक नाम बताए हैं, और हम यहाँ आने से पहले ऐसा मानते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के योग है। संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धि प्रधान होते हैं, उनके लिए बुद्धि योग ठीक है, कुछ भावना प्रधान है, भक्ति प्रधान है, प्रेम प्रधान है, उनके लिए भक्ति योग ठीक है, कुछ कर्मठ लोग हैं, कुछ करने वाले रोजगार वाले लोग हैं, उनके लिए शायद कर्म योग है, निष्कार कर्म करते चले जाओ ये उनके लिए शायद चढ़ाया है भगवान की, इस प्रकार से समझते हैं। लेकिन जब मैं इस ईश्वर विश्वविद्यालय में आया तो मैंने ये देखा कि ये जो योग यहाँ पर जिसके प्रशिक्षण मिलता है उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, भक्ति योग, बुद्धि योग और भी अन्य जितने प्रकार के योग हो सकते हैं उन सबका संबंध है। ये एक इंटीग्रेटेड योग है जिसको हम सीखते हैं तो हमारा बौद्धिक पक्ष भी विकास को प्राप्त करता है, हमारा भाव पक्ष, भावना पक्ष भी, हमारी इमोशनल एबिलिटी भी डेवलप होती है और इमोशनल कंट्रोल भी हमारा होता है और साथ साथ मन की स्थिरता भी हमें आती है, जो एक मनुष्य के विकास के लिए जितने पहलू जितने आस्पेक्ट हो सकते हैं साइकोलॉजी जिसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं वो भी साथ साथ होता है। योग की साइकोलॉजी, योग की साइकियाट्री, सब प्रकार की साइकोलॉजी समाज आती है और पुरुष का हर प्रकार का विकास भी होता है, प्रकाश भी उसे मिलता है, आनंद भी मिलता है, शांति भी मिलती है और उसे जो संस्कार है एक एक बुद्धि हैबिट को या एक एक अवगुण या दुर्गुण को या आत्मलक्षण को उसे छोड़ने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि जैसे जंगल को आग लगा दी जाए तो सब कांटे दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से योग की विधि ऐसी आत्मा पर गिरती है कि जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है उस पर आई की तरह टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाती है और आत्मा एक सच्चे सोने की तरह से एक प्रकाशमान हो जाती है। ऐसा वो योग है जो यहाँ सिखाया जाता है। और मैं पहली दफा की जब आपसे और अपने देश में गया था जिनसे चर्चा की आपके सामने हुई तो मैंने देखा कि वहां पर लोगों को इन चीजों की बहुत शौक है, बहुत कदर है। भारत के लोग तो बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि देश हमारा है और हम हमारे देश की ये देन है, हम लोग तो योग को जानते ही हैं और जैसे आपको मालूम है कि जिस देश में कोई चीज होती है वहां उसकी कदर कुछ कम होती है और देशों में ज्यादा होती है, परंतु ये साथ जानने की देश में जा रहे हैं कि केवल यहाँ कदर इस चीज की कम होती है बल्कि ये ख्याल से भी कि आत्माएं हमारे लिए एक जगत या रंग या जाति का कोई भेद नहीं, जहां जिस व्यक्ति को इस चीज की तलाश है, इच्छा है, वहां पहुंचकर उसको इस चीज की कौन चीज देना ये हमारा कर्तव्य है। और आज आपने जो इस सभा में इस आत्मा के प्रति कुछ कहा और अपना भाव प्रकट किए उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, भाई लोगों का, और ये कह के समाप्त करता हूँ।